भूमि अपने बालों को टॉवल से पोंछते हुए अपने दूसरे हाथ से फोन को अपने हाथ में ले चुकी थी, लेकिन फोन में रिंग अभी भी हो रही थी। आकाश के ऐसा कहने पर भूमि कुछ सोचती है और वो टॉवल को अपने हाथों में लेते हुए कहती है, अच्छा तो आपको टॉवल चाहिए तो वहाँ क्यों खड़े हैं, लीजिए मेरे पास आकर ले लीजिए। आकाश घूर कर भूमि को देखते हुए कहता है, सोच लो अगर मैं वहाँ आया ना तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। भूमि ने भी बेफिक्री के साथ अपने कंधे उचकाए और आकाश से कहने लगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर आकर टॉवल लेंगे इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए आपके फ़ोन की रिंग भी बज रही है, यहाँ आइए ये टॉवल और फ़ोन दोनों ले जाइए। सोच लो वाइफी, मैंने इस वक्त कुछ भी नहीं पहन रखा है, पता चले अगर मैं सामने आ गया तो तुम बेहोश हो गई, आकाश ने उसे चेतावनी देने के अंदाज में कहा। तो भूमि हंसते हुए कहती है, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप आइए और आकर ये टॉवल और फ़ोन ले जाइए वरना मैं ये फ़ोन काट दूंगी। आकाश तुरंत बोलता है, खबरदार जो फ़ोन काटा तो, कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो सकती है, रुको मैं आ रहा हूँ। भूमि की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और वो हैरानी से कहती है, आप सच में आ रहे हैं क्या? आकाश अपना एक पैर बाहर निकालना ही वाला होता है कि भूमि अपना हाथ दिखाकर उसे रोकती हैं और कहती हैं, रुक जाइए क्या कर रहे हैं, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ रही हूँ वहाँ पर, मैं ही देती हूँ आपको। आकाश की हंसी छूट जाती है और भूमि उसके पास बाथरूम के दरवाजे पर आती है। उसने अपने कंधे पर रखा हुआ टॉवल और फ़ोन दोनों आकाश की तरफ बढ़ा दिए। आकाश ने टॉवल भूमि के हाथ से पकड़ा और अगले ही पल वो टॉवल के साथ साथ भूमि को भी अपनी तरफ खींच लेता है। भूमि संभाल नहीं पाती है और सीधे बाथरूम के अंदर आकाश के सीने पर जा गिरती है। उन दोनों को इस छीना झपटी में फ़ोन कब रिसीव हो जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता है। क्या कर रहे हैं, छोड़िए ना, कोई देख लेगा। देख लेगा तो देखने दो, मैं क्या डरता हूँ किसी से, अपने कमरे में हूँ अपनी बीवी के साथ और जिस सिचुएशन में हूँ ऐसे में कोई हमें देख भी लेगा ना तो खुद ही वापस चला जाएगा। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती है, कोई हमें ऐसे देखेगा तो क्या सोचेगा, क्या सोचेगा, यही कि नया नवीला शादी का जोड़ा है और अकेले में रोमांस कर रहा है, इसके अलावा कोई भी हमें देखकर कुछ नहीं पूछेगा। आकाश और भूमि बाथरूम के टॉवल में लिपटे हुए एक दूसरे के साथ जो भी बातें कर रहे थे वो फ़ोन की दूसरी तरफ जेनी को साफ सुनाई दे रही थीं। जेनी को इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती थी लेकिन आकाश के साथ रहते हुए उसे हिंदी समझ में आने लगी थी और इस वक्त वो उनकी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। भूमि की आवाज़ तो उसने पहली बार सुनी थी लेकिन आकाश की आवाज़ तो वो लाखों की भीड़ में भी पहचान जाएगी। जेनी ने आकाश के फ़ोन पर उसकी और भूमि की सारी बातें सुन ली थीं और इस वक्त उसका पूरा चेहरा गुस्से में भर रखा था। वो गुस्से में पागल हो गई थी और बौखला गई थी। फ़ोन को डिस्कनेक्ट करने के बाद उसने फ़ोन वापस संदीप को दे दिया और कोई रिएक्शन नहीं किया। उसे पता था कि संदीप आकाश का वफ़ादार है, अगर जेनी ने एक भी गलत स्टेप उठाया तो संदीप उसे उसी पल वापस अमेरिका भेज देगा और अब किसी भी हाल में जेनी वापस अमेरिका नहीं जाने वाली थी। इसीलिए उसने संदीप को भनक तक नहीं लगने दी कि उसने फ़ोन पर कहा गया सुन लिया है और अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। उसे इतना शांत देखकर संदीप हैरान हो गया था, लेकिन जेनी ने फ़ोन वापस करते वक्त उससे कहा था कि स्काई ने फ़ोन नहीं उठाया है, पर अपने कमरे में जाकर जेनी खुद के गुस्से पर काबू नहीं रख पा रही थी। उसे किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना था, जब तक वो यहाँ से निकलेगी नहीं तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगी। यहाँ पर वो संदीप की निगरानी में है और संदीप उसे कभी भी आकाश तक पहुँचने नहीं देगा। जेनी कमरे से बाहर आती है और संदीप से कहती है कि उसे कुछ ज़रूरी सामान लेना है। संदीप अपनी जगह पर खड़ा होते हुए कहता है, तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बता दो, मैं लेकर आता हूँ। जेनी उसे कुछ सामान की लिस्ट देती है और संदीप गार्ड्स को जेनी की निगरानी करने का कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के 10 मिनट बाद जेनी उन गार्डों को देखती है जो फार्म हाउस के दरवाजे के पास खड़े थे। इसका मतलब वो चाहकर भी उनके सामने से नहीं निकल सकती है, पर उसे यहाँ से निकलना तो था ही। उसने एक छोटे से पर्स में ज़रूरत के हिसाब से पैसे रखे और उस पर्स को अपने कंधे पर टांग लिया। उसने फार्म हाउस के दरवाजे के पीछे छुपकर नीचे से एक पत्थर उठाया और उसे झाड़ियाँ के पास फेंक दिया। जैसे ही झाड़ियाँ में हलचल होती है दोनों गार्ड सतर्क हो जाते हैं। वो अपनी बंदूक निकालते हैं और उसे अनलॉक करके झाड़ियाँ के पास देखने लगते हैं। एक गार्ड कहता है, तुम जाकर वहाँ देखो। दूसरा गार्ड हाँ में सर हिलाता है और उस तरफ चला जाता है। जैसे ही वो झाड़िया के पास तलाशी लेने लगता है जेनी ने दूसरा पत्थर उठाया और जोर से उस गार्ड के सर पर दे मारा। झाड़िया के पास गिरते हुए वो गार्ड जोरों से करहाने लगता है और आसपास देखने लगता है, पर जेनी जल्दी से दरवाजे के पीछे छुप जाती है। अपने साथी गार्ड को तड़पता हुआ देख वो गार्ड जल्दी से दरवाजे से हट जाता है और उसकी मदद करने के लिए आता है। मौके का फायदा उठाकर जेनी फार्म हाउस के गेट से निकल जाती है और एक बार जब वो दरवाजे से बाहर निकलती है तो उसके बाद उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया, वो सीधे भागती रही और भागते भागते मेन हाईवे पर पहुंच जाती है। उसे शहर तक जाने के लिए गाड़ी चाहिए थी, तभी उसे वहां से एक कार गुजरती हुई नजर आती है। जेनी उसके सामने हाथ हिलाती है तो कार में एक बुजुर्ग करोड़पति बैठे हुए थे। जेनी विदेशी थी, उन्होंने उसकी मदद की और उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर जयपुर हाईवे तक छोड़ दिया। हाईवे पर पहुंचकर जेनी ने सबसे पहले एक होटल लिया और होटल में पहुंचकर उसने सबसे पहले जॉन को फोन किया। जेनी को इस वक्त पैसों की जरूरत थी और उसके पास जो पैसे थे वो उसकी जरूरत के लिए बहुत कम थे, लेकिन उससे पहले उसने जॉन को सब कुछ बता दिया कि क्यों उसे पैसों की जरूरत है। यहाँ पर स्काई ने शादी कर ली है और उसे स्काई को अपने साथ वापस अमेरिका लेकर जाना है। जॉनी जेनी के पास पैसे तो भेजता है, लेकिन वो हैरान हो जाता है उसकी बात सुनकर कि स्काई ने शादी कर ली है। ये बात उसे बहुत ज्यादा हैरान कर देती है, क्योंकि जितना वो स्काई को जानता था वो शादी करने वाला इंसान नहीं था। अगर उसकी शादी की खबर सुनने में मिली है इसका मतलब जरूर कोई बड़ा रीजन रहा होगा। और उससे भी बड़ी बात ये है कि जेनी इंडिया में है, और जेनी कितनी पागल है स्काई के लिए ये बात तो जॉन जानता ही था। जेनी जरूर कुछ गलत करने वाली है, उसे स्काई से बात करनी होगी। पर प्रॉब्लम ये थी कि उसका स्काई से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था। ना चाहते हुए जॉन को भी इंडिया आना ही पड़ रहा था। वहीं आकाश के कमरे में आकाश ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और भूमि ने अलमारी से उसका कोट निकाला। उसे कोट निकलता हुआ देख आकाश ने आईने में तिरछी नजरों से भूमि को देखता है। भूमि कोट को आकाश की तरफ करती है और आंखों के इशारे से पूछती है, तो आकाश अपनी आंखें छोटी करता हुआ नामे सर हिलाता है।
उसके ऐसा करने पर भूमि का चेहरा उदास हो जाता है और वो उसके कोट को वापस टांग कर एक दूसरा कोट निकालती है। उसने फिर से आईने में आकाश को देखकर इशारे में पूछा, तो आकाश फिर से अपना अजीब सा चेहरा बनाते हुए नामे सर हिलाता है।